मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोगों ने पिछले दिन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दो बातें सीखी कि जब क्रोध का अवसर आवे तो हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए जिससे हमारी सहनशीलता हमारा धैर्य और हमारी क्षमता बढ़ती है। और दूसरी चीज कि जब मान सम्मान या अपमान की स्थिति आवे तब भी हमें अपनी विनम्रता अपनी कोमलता और अपनी मृदुता को बनाए रखना चाहिए। हम ऐसे अवसर आते हैं जिनमें कि दूसरे के प्रति कठोर हो जाते हैं, कोई निर्णय लेना होता है अपने प्रति तो हम बहुत पोलाइटली लेते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति हम रफ और टफ हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी जेंटिलनेस अपनी मृदुता बनाए रखनी चाहिए। ये हमने पिछले दिनों सीखा। असल में जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहें वैसा हम बना सकते हैं। थोड़ी सी हमारी कमजोरियां जो हमारी मजबूरी की तरह हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं उनको हम अगर रोज़ रोज़ देखते रहें और हटाने के लिए भावना भाते रहें तो बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को अपने जीवन में घटा बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें हम शामिल करना चाहें उनको शामिल कर सकते हैं, जिनको हम नील करना चाहें उनको नील भी कर सकते हैं। और हमारे अपने जीवन का प्रभाव आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं अपने आप से दुखी हूँ, आपको क्या तकलीफ, मैं गुस्सा करता हूँ, आपको क्या मतलब इससे, नहीं भैया, हमारे गुस्सा करने से पास का वातावरण भी बिगड़ता है। हमारे अंदर यदि कठोरता आती है तो आसपास का परिवेश भी दूषित होता है। हम दुखी होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी उस दुख का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हमें यह ध्यान में रख करके कि हमारे अपने जीवन से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक बार बच्चे लोग आपस में खेल खेल रहे थे। क्या खेल कर रहे थे? बड़े भैया छोटे भैया। उनके यहाँ पर उनके पिताजी दो भाई थे। अब तो खैर कुछ दिन के बाद में चाचा नाम का जीव ढूंढना कठिन हो जाएगा, मौसी नाम का जीव मिलना कठिन हो जाएगा। ये जीव पहले हुआ करते थे, लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि अब तो ऐसा संभव ही नहीं है। ना कोई मौसी होने वाली है, ना कोई चाचा मिलने वाला, ना ताऊ मिलने वाला है कुछ दिन के बाद, क्योंकि अब तो दो दो हैं बस। वो बीच में बात ऐसी आ गई, तो छोटे भैया बड़े भैया का खेल खेल रहे हैं वो दो, उनके पिताजी और उनके चाचा हैं घर में। तो खेल खेलते खेलते और जो बड़ा भैया बना था तो उसने छोटे भैया को जरा गड़बड़ हो गई खेल में तो डांट दिया। तो छोटा वाला कहता कि खेल खत्म, अब नहीं खेलते। अरे क्यों? तो बोलते तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? तुमने डांटा क्यों? बोले वाह, तुम गलत करोगे तुम डांटेंगे नहीं? बोले नहीं, हम छोटे भैया बड़े भैया का खेल खेल रहे हैं, और हमने तो बड़े भैया को, दादा को, कभी भी छोटे भैया को डांटते देखा ही नहीं, इसलिए तुमने डांटा, ये खेल गड़बड़ हो। बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं। मेरा कहने का आशय ये है, वे खेल भी खेल रहे हैं तब भी उनके भीतर ये इंप्रेशन है कि उस खेल में भी वो सब बातें जो वास्तविक हैं उनका ध्यान रखना है। अगर परिवार में एक दूसरे के प्रति हम अगर क्रोध का व्यवहार करते हैं, घृणा का व्यवहार करते हैं, कठोरता से पेश आते हैं, तो मानिएगा कि हम अपना ही नहीं, अपने आसपास के परिवेश को भी दूषित करते हैं, उन्हें भी वही करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन से जितनी प्रेरणा मिलती है उतनी हमारी वाणी से नहीं मिलती। वाणी से प्रेरणा बहुत थोड़ी मिलती है, जीवन से प्रेरणा तुरंत मिलती है, देखने में आती। इसलिए हमारा प्रयास पिछले कई दिनों से यही है कि हम शरीर और वाणी से धर्म करने के तो बहुत आदि हो गए हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में भी वे धर्म निरंतर आते चले जाएं, तो हमारे और दूसरे दोनों के जीवन में अच्छा बनने में आसानी होगी। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। तीनों इतने सरल हैं कि उनकी सरलता कैसे देखने में आती है। एक जगह अपन जब पढ़ते हैं कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये इस तरह की प्रक्रिया है कि जिसमें मन वचन काय तीनों के द्वारा ऐसे हम पेश आ रहे हैं कि जो चीज मन में है वो इतनी भली है कि उसको वाणी में कहने में शर्म नहीं लगती और शरीर से करने में कोई गड़बड़ी नहीं मालूम पड़ती। इतना चित्त में सरलता आ गई है और ऐसा चित्त हो गया है, ये अर्थ है मन वचन काय की ऋजुता का या कि सरलता का। ऐसा नहीं लेना कि जो मन में आया गड़बड़ सड़बड़ वो वचन से कह दिया और वही वैसा कि हमारे मन में आ रहा है कि हम आपको एक धक्का दे दें और आपने दे भी दिया, क्योंकि आज कहा था कि सरल होना चाहिए, धक्का देने का मन में आवे तो दे देना चाहिए। ऐसा नहीं, मन में इतनी सरलता हो कि उसे हम वाणी से सहज रूप से कह सकें और शरीर से भी करने में हमें कोई क्षति ना हो, किसी की भी और हमारी अपनी स्वयं की भी, ये मन वचन काय की सरलता है। लेकिन क्या करें, ये सरलता हमारी थोड़ी गड़बड़ा गई है। अब थोड़ा दिखावा, थोड़ा प्रदर्शन, थोड़ा बनावटीपन, थोड़ी मिलावट, ये सारी चीजें हमारे जीवन में शामिल हो गई। इन चीजों से हम कैसे बचें? दूसरे के साथ छल करने की, धोखा देने की, उसे ठगने की जो हमारी आदत हो गई है, उसे हम कैसे बदलें? और ये अगर आदत हमारी छूट जावे तो सरलता तो हमारा अपना स्वभाव है, मन वचन काय तीनों एकदम सरल हो जाएंगे यदि हम दिखावा ना करें, यदि हम बनावटीपन ना लाएं, यदि हम छल कपट और दूसरे को धोखा देने और ठगने का भाव अपने भीतर ना लाएं, तो हमारा जीवन तो एकदम सरल है ही, हमारा तो वो स्वभाव है। रिजोर भावो आर्जवम, योगस अवक्रता आर्जवम। मन वचन काय की वक्रता नहीं होना, टेढ़ापन नहीं होना, यही तो आर्जव धर्म है। अब हम देखें कि ये जो जिसको अपन मायाचारी भी कहते हैं या कि ठगना कहते हैं, वो किस तरह का है। मैं सोचता हूं कि जब अपने मन में इस तरह का भाव आ जाता है कि हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें लाभ होगा, ये जो लाभ की प्रवृत्ति हमारे भीतर आती है, तो फिर हम इन सब चीजों को करना शुरू कर देते हैं। आज जितनी ज्यादा अपने जीवन में कृत्रिमता बढ़ रही है वो छिपी नहीं है, और कृत्रिमता का कारण क्या है, हम अपने को वैसा दिखाना चाहते हैं जैसे हम नहीं हैं, इतना ही कारण है। हम जैसे हैं वैसा अगर हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देवें तो हमें लगता है कि उससे तो हमारी हेटी हो जाएगी, उससे हमें लाभ नहीं दिखाई पड़ता, तब हम अपना लाभ देखने के लिए और इस तरह अपने जीवन को बना लेते हैं कि जिसमें छल कपट, दिखावा, प्रदर्शन, आडंबर, ये सारी चीजें शामिल होने लगती हैं। हमें इस चीज से बचना चाहिए। सब समझते हैं इस चीज को, और दूसरे के मन में अगर दूसरे के प्रति छल कपट का भाव हो तो वो छिपता भी नहीं है। थोड़े दिन भले ही छिपा रहे लेकिन ज्यादा समय तक वो छिपता नहीं। और इससे क्या होता है, हमारी प्रामाणिकता और हमारी विश्वसनीयता धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाती है। जैसे कि सबको मालूम है, बच्चे लोगों के यहाँ पर कहानी में आता है कि वो हमेशा दूसरे को तंग करने के लिए और एक अपने खेत में से आवाज देता था कि ये बचाओ भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ों को ले गया। तो सब लोग आकर के इकट्ठे हो जाते थे तो फिर वो हंसने लगता था कि देखा कैसा बुद्धू बनाया, कोई नहीं आया, भेड़िया थोड़ी आया। और एक दिन जब सच्ची में आ गया था तब फिर कोई मदद करने नहीं आया था। ये बहुत सीधी सी चीज है। ऐसा अगर अपन दूसरे के साथ में मिथ्या व्यवहार करेंगे, ऐसा दूसरे के साथ में छल कपट और धोखा देंगे और उसमें आनंद मानेंगे तो हमारी विश्वसनीयता और हमारी प्रामाणिकता दोनों धीरे धीरे करके और नष्ट होती। आज जो है वर्तमान में यही चीज है, हम कृत्रिम हो गए हैं, दिखावा करने लगे हैं, जिससे हमारे प्रति अब लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, संदेह ज्यादा हो गया। यहां तक कि परिवार में भी एक दूसरे के प्रति संदेह ज्यादा है, विश्वास कमती है। और भैया रिश्ते तो सब विश्वास से चलते हैं, चाहे भगवान से हमारा रिश्ता हो और चाहे संसार के व्यक्तियों से या वस्तुओं से हो, जितने भी संबंध हैं वे सब विश्वास के और श्रद्धा के संबंध हैं। इस विश्वास और श्रद्धा को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम कृत्रिमता से बचें, आडंबर से बचें, अपने मन को सरल बनाने की कोशिश करें। सरलता के मायने क्या है, मैं एक दिन बैठे बैठे डिक्शनरी में देख रहा था तो 4-5 शब्द मिले उसके लिए। अपन उनको थोड़ा विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किन क्षणों में हम सरल हो जाते हैं और किन क्षणों में हम कठिन हो जाते हैं। बस इतना ही है। कठोर होना और कठिन होना दोनों में थोड़ा फर्क करना। अपन ने कल कठोर होने की बात समझी थी, आज कठिन और जटिल कॉम्प्लेक्स हो जाना, हाँ ये एकदम अलग चीज है। हम स्वयं भी जैसे कि कोई चीज उलट जाती ना, जैसे रस्सी वगैरह, तो फिर उसको सुलझाने में कैसा होता है, बहुत मुश्किल जाती। ऐसा ही अपने जीवन में भी हम कुछ चीजें इस तरह की शामिल कर लेते जिससे कि हमारा जीवन उलट जाता है और पूरी जिंदगी हम सुलझा नहीं पाते। ये जो जीवन की उलझन है वो काहे की वजह से, इस दिखावे की वजह से, इस आडंबर की वजह से। आज आपने जैसा शो कर दिया अपने आप को, अब उसको जीवन भर मेंटेन करना पड़ेगा। आज किसी के सामने आपने अपने को जैसा प्रस्तुत कर दिया, अब उसके सामने हमेशा वही चेहरा लगाना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन उलझा हुआ जीवन है, और ऐसे कठिन जीवन को हम कैसे सरल बनाए इस पर हम विचार करें। तो सरलता के मायने हैं ईमानदारी, सरलता के मायने हैं स्पष्टवादिता, सरलता के मायने हैं उन्मुक्त हृदय होना, और सरलता के मायने हैं सादगी, और सरलता के मायने हैं भोलापन, इनोसेंट, सिंपल, ऑनेस्ट, वार्म हार्टेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीजें हैं सरलता के मायने। ये हमारे भीतर हम झांक करके देखें विभिन्न अवसरों पर कि ये चीजें हमारे भीतर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इनको धीरे धीरे करके और अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करेंगे। दो ही प्रक्रियाएं हैं, या तो इन चीजों को अपने भीतर प्रकट करें, और या फिर जो इनके अगेंस्ट की चीजें हैं, जो इनके विपरीत बातें हैं, उनसे धीरे धीरे बचने का प्रयास करें। ईमानदार होने पर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति हमें धोखा दे सकते हैं। सरल होने पर भी यही मुश्किल अपने जीवन में खड़ी हो जाती है कि फिर लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। मुश्किल ये थोड़ी सी पड़ेगी, पर इसके बावजूद भी हमें अपनी उस ईमानदारी को बनाए रखना है। ये भर ध्यान में रखने की, किसी ने हमें अगर ठग लिया है तो हम भी उससे ठगें, ये पशु जगत की बात है, मनुष्य जीवन में ये ठीक नहीं है। कबीर ने लिखा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख उपजे, पर ठगियां दुख होए। अपने को अगर कोई ठग ले तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इस बात का संतोष बना रहता है कि मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो किसी को नहीं ठगा। लेकिन एक बार दूसरे को धोखा दे दें या दूसरे के साथ छल कपट कर लें तो जीवन भर ही नहीं, अगले जीवन में भी हमें दुख ही भोगना पड़ता है। थोड़े से ठगे जाने पर, ठगाए जाने पर थोड़ी देर को दुख उत्पन्न होगा कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, लेकिन इतना संतोष मन में रहेगा कि हमने तो किसी के साथ नहीं किया। एक छोटी सी घटना आती है कि ये बच्चों की कहानियां वगैरह में लिखा रहता है ऐसा, लेकिन बड़ा उससे संदेश मिलता है, छोटी छोटी सी घटनाएं भी बड़ा संदेश देती। मैं पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति जंगल में भटक गया तो एक पेड़ पे चढ़ गया। फिर उस पेड़ पर जैसे ही चढ़ा तो उसने देखा कि उस पर तो एक रीछ बैठा हुआ है, तो उसको बहुत डर लगा कि ये रीछ तो हमको खा ना जाए। लेकिन वो रीछ जो है वो उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने भी देखा कि ये भी विपत्ति में, मुसीबत में पड़ा हुआ। उतने में क्या हुआ कि एक शेर आकर के नीचे पेड़ के बैठ गया। अब तो और मुश्किल हो गई, बच्चों की कहानी ऐसे ही रहती है। हाँ, फिर वो भागते भागते पेड़ पे चढ़ गया, फिर वहां पर एक रीछ बैठा हुआ था, फिर एक शेर आ गया वहां पर। अब क्या हुआ कि उस शेर को भी भूख लगी, तो उसने सोचा कि इन दोनों में से एक को अपन ले लें तो काम चल जाएगा, अभी ये थोड़ी देर में थक जाएंगे सोएंगे तो ही। तो अब दोनों को नींद सही में आने लगी, तो रीछ ने कहा कि सुनो एक एक करके सो अपन, क्योंकि कोई विपत्ति आ जाएगी तो अपन एक दूसरे को बचा लेंगे। तो रीछ ने कहा कि ठीक है हम पहले सो जाते हैं। आदमी ने कहा कि हम जगते हैं अभी। रीछ सो गया तो शेर ने नहीं, पहले अपन आदमी को सुला देते हैं, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, कैसा करें, हम तो भूल ही गए कि किसको पहले सुलाना चाहिए। पहले रीछ को ही सुलाते हैं, थोड़ा सुधार लिया हमने मन ही मन में सोच करके ऐसा। तो रीछ सो गया तो शेर ने कहा आदमी से कि देख मेरे को तो भूख लगी है, एक ना एक को तो दोनों में से मैं खाऊंगा ही, और अभी ये सोया है, तू धीरे से धक्का दे दे अगर तो बस मैं इसे खा करके लौट जाऊंगा, तू बच जाएगा। शेर की बात सुन करके और आदमी ने सोचा कि ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है। आदमी की ईमानदारी इतने जल्दी गायब हो जाती है कि बड़ा कठिन है, और उसने रीछ को धक्का देने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया कि उतने में रीछ की नींद खुल गई। रीछ ने कुछ नहीं कहा, जबकि समझ गया कि ये मुझे नीचे गिराना चाह रहा था। फिर भी उसने कहा आदमी से कि अब तुम सो जाओ। अब आदमी ने सोने का बहाना किया, उसको तो जिसको दूसरे पर विश्वास नहीं है उसे दूसरे के प्रति भी अविश्वास अपने बारे में बना रहता है। नहीं सोया वो, लेकिन उतने में शेर ने रीछ से कहा कि देख ये कितना विश्वासघाती है, तेरे साथ इतना धोखा करा, अब तो तू इसे धक्का दे दे। तो उसने कहा सुनो मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता। ऐसी बात उसने कही। इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर आज वर्तमान में दूसरे के प्रति धोखा देने का, छल करने का कितना अधिक भाव बन गया है कि एक कहानी लिखने वाले को मनुष्य से भी बड़ा उस पशु के भीतर के विश्वास को बताना पड़ा, मनुष्य को धोखे वाला बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा, जबकि मनुष्य को तो बहुत विश्वासी होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए। हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए जबकि कोई हमें ठगे, हमारे साथ छल कपट करे। बाबा भारती के घोड़े की बात सबको मालूम, बाबा भारती के साथ घोड़ा छीन करके डाकू ने छल किया था, लेकिन बाबा भारती ने क्या कहा, ये बात किसी से कहना मत वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि दीनहीन की मदद नहीं करनी। धोखा देने से एक बार अगर अपन धोखा देते हैं तो ईमानदारी पर संदेह होने लगता है, विश्वसनीयता पर, प्रामाणिकता पर संदेह होने लगता है। इसलिए सरलता वही है जिसमें कि हम ईमानदार रहते हैं, दूसरे का साथ छल नहीं करते, विश्वास और प्रामाणिकता बनाए रखते हैं, चाहे दुकान में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे अपने घर में हो, या कि किसी सामाजिक और धार्मिक स्थल पर हो। हमें हमेशा अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनाने के लिए ईमानदार बने रहना चाहिए, जबकि दूसरा हमारे साथ विश्वासघात करे या बेईमानी भी क्यों ना करे। दूसरी चीज, हमें उन्मुक्त हृदय होना चाहिए। उन्मुक्त हृदय के मायने क्या है कि कम से कम अपनों के प्रति तो हमें दुराव और छिपाव का भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हमारे अंदर ऐसी आदत बन जाती है तब हम अपनों के प्रति भी दुराव और छिपाव रखने लगते हैं। वो चीज हमारे, फिर हम खुले हृदय से मिल नहीं पाते। अच्छा देखो, किसी व्यक्ति के प्रति आप अपने मन में और इस तरह का छल करने का, धोखा देने का भाव रखेंगे, अगर कोई दुराव होगा आपके मन में, तो जरूर से आप थोड़े से बच बच करके कट करके चलेंगे, सामना नहीं कर पाएंगे, सहसा वार्म हार्टेड मिल नहीं पाएंगे अपन खुले दिल से। और आज ये चीज कितनी कम हो गई है। आज अगर भैया भी राखी बंधवाने जाता है बहन को तो उतने खुले दिल से नहीं, क्यों? क्योंकि भीतर ये है कि पता नहीं ये कितना देना पड़ेगा इसको, बजट तो ये इस तरह का है। अरे खुला खुला कह दो तो ना, बहन मैं इस बार तेरे को कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो बस प्रेम से एक शब्द लिख के दे रहा हूँ कि मेरी बहन बाह 100 वर्ष तक जिए, यही शुभकामना आज रक्षाबंधन पर तेरे लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, दिखावा करेंगे अपनी सामर्थ्य से ज्यादा। ऐसा संबंधों में आ गया है कि नहीं आ गया? और अगर उतने ही अपन खुले हृदय से उस चीज को कह देते तो हमारे संबंध और हमारी उलझन, हमारे संबंध बने अच्छे रहते और उलझन भी नहीं आती। लेकिन अपन अपने हाथ से ऐसी उलझनें पैदा करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। वर्णी जी चिरौंजा बाई के धर्म पुत्र थे, तो वर्णी जी ने एक बार क्या किया कि सभा में गए और बड़ी करुणा आ जाती थी, बड़े संवेदनशील थे, सो वहां पर बच्चों के लिए और विद्यालय में कुछ चंदा इकट्ठा हो रहा था उनके भोजन ओजन के लिए, सो उसमें 300 रुपए दे दिए। अब 300 रुपए सन 30 और 35 के अंदर 300 रुपए तो बहुत होते थे, आज तो 300 क्या 3 लाख के बराबर होंगे वो 300 रुपए उस समय। तो 300 रुपए दे दिए। अब क्या था कि इनको 3 रुपए दिन में और नहीं 3 रुपए महीने में, सॉरी 3 रुपए महीने में फल फूल खाने के लिए मिलते थे। तो अब इन्होंने क्या सोचा, अब भाई जी को नहीं बताएंगे कि 300 दे आए, नहीं तो डांट पड़ेगी। अब देखना संबंध कैसे बिगड़ जाते हैं, कैसे उलझन अपने हाथ से खड़ी हो जाती है। अगर सीधे सीधे आके कह देते कि हम तो 300 रुपए दान कराए तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं बताया, नहीं बताया और फल फूल खाना बंद कर दिया, और वो 3 रुपए तो भाई जी से मिल ही रहे थे, सो वो पास बुक में जमा करना शुरू कर दिए। 3-3 रुपए जुड़ेंगे, कब तक जुड़ेंगे, 10 महीने में 30 हो जाएंगे और फिर 100 महीने में 300 हो जाएंगे, हिसाब लगा लिया, पक्के थे हिसाब में। लेकिन हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी विश्वास से चलती भैया। अपन लोग हिसाब किताब वाली दुनिया वाले हो गए असल में, पर दुनिया हिसाब किताब से थोड़ी देर चलती है, चलती तो पूरी विश्वास से ही है। अब क्या हुआ कि एक दिन बाई जी को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, मेरे से कटा कटा रहता है, रहना पड़ेगा, आंख नहीं मिला सकेंगे आप, अगर आपके दिल में कोई खोट है तो। हाँ, अब ये बात अलग है कि इतने पक्के हो जाते हैं कि फिर बाहर जरा अपन लोग होशियार हो जाते तो ऐसे ऐसे हो जाते कि पता तक नहीं लगने देते हैं कि अपन दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता कई बार, पर कहीं ना कहीं से मालूम पड़ ही जाता। वो कहते हैं, एक जगह लिखा है कि ये जो घास फूस होती ना उसमें अगर बंदर छिपके बैठ जाए तो कितनी देर, थोड़े में तो हिलेगा, पता लग जाएगा उसका। बंदर को प्याल में छुपाया नहीं जा सकता, ऐसे ही जो है किसी के साथ छल ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। और भाई जी के हाथ में पासबुक लग गई कि उसमें पैसे जमा हो रहे हैं, क्या बात है। फिर वो जो नफीस जिसकी दुकान से फल फूल खरीदते थे उससे पूछा कि आजकल बाबू हमारा फल फूल लेता है कि नहीं। अरे भाई वो तो बहुत दूर के दूसरे रास्ते से कट करके निकल जाते, दुकान के सामने से ही नहीं निकलते। अच्छा ये सब बात चल रही है। तो सीधे जब वर्णी जी स्कूल से आए पढ़ के विद्यालय से, काय भैया जब जब मिथ्या व्यवहार हमारे साथ करना कब से सीख लिया, सीधा कह दिया। वर्णी जी ने हाथ जोड़ लिए और सारी घटना, था तो सरल हृदय लेकिन भय की वजह से और ऐसा करना पड़ा उनको, सो सीधा जाकर के कह दिया कि भाई जी 300 रुपया दान कराए थे, अरे तुमने इतना पुण्य का काम किया और फिर हमारे साथ ऐसा मिथ्या आचरण करने की क्या आवश्यकता थी, आज के बाद से सब संपत्ति तुम्हारी, जहां जैसे दान करना हो सो करो, मगर तुम हमारे साथ रह के मिथ्या व्यवहार न सीखो, सरल बनो। ये बात जो है वो हमारे अपने परिवार जनों से हम कह पाते हैं क्या, अपने बच्चों से कह पाते कि कभी भी हमारे साथ जो है तुम्हारे अंदर वैसा कह दो, उन्मुक्त हृदय होकर के संबंध रहे अगर हमारे, तो वे हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत स्पष्टवादी होना यह भी सरलता का ही काम है। कैसे, इसका भी एक उदाहरण वर्णी जी का। असल में हमारे भीतर जो कमजोरियां हैं उनको हम दूसरे को नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते, एक मुश्किल ये भी है कि उन कमजोरियों का दूसरा व्यक्ति मखौल उड़ाता है, और अगर अपन दूसरे की कमजोरियों को अपने जैसी ही मान लेवें और मखौल ना उड़ाएं तो दूसरा आसानी से अपनी कमजोरियां कहने के लिए बिल्कुल उन्मुक्त हो जाएगा। उसको ये लगता कि इनसे कमजोरी बता देंगे तो ये ब्लैकमेल करेंगे हमारे साथ में, तो कोई बताना नहीं चाहता। अपने परिवारजनों को भी हम अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहते, अगर कमजोरी बताने से अपमान मिले तो कौन बताएगा कमजोरी, और कमजोरी बताने से सम्मान में कमी ना आए बल्कि आपकी स्पष्टवादिता के लिए पीठ थपथपाई जाए तो आगे से आप, भैया कमजोरी बार बार बताने में भी आदमी को शर्म लगेगी, इसलिए कमजोरी निकाल ही देगा वो, 100 दफे बताना पड़े अगर तो। अब वर्णी जी की ये बहुत सरलता थी कि उनके भीतर जो भी चीज कमजोरी थी उसे स्पष्ट बता देते कि भैया हम तो ऐसे हैं, हमारे बारे में तुम कोई मिथ्या धारणा नहीं बनाना, हम अगर भले हैं तो ठीक है भली भले हैं, और हम बुरे हैं तो हम तुम्हें ऐसा नहीं शो करेंगे कि हम तो बहुत भले हैं, हम बुरे हैं तो बुरे हैं भैया, हमको ऐसा आता है। एक बार एक व्यक्ति ने भरी सभा में ऐसे ही वर्णी जी से पूछ लिया, कहा वर्णी जी भिंडी भक्ष है कि अभक्ष है, भिंडी होती भक्ष है कि अभक्ष है। अब क्या कहें वर्णी जी, तो मालूम क्या जवाब दिया, ए भैया हमें तो भावुत है सो हम खाते हैं, मतलब हमें रुचिकर लगती है सो हम खाते हैं। और इस इतना ही जवाब, इसमें पूरा जवाब हो गया कि वर्णी जी खाते हैं इसका मतलब अभक्ष तो नहीं है, लेकिन वर्णी जी छोड़ नहीं पा रहे जब कमजोरी है, अपनी कमजोरी भी बता दी और यह भी कह दिया कि है तो खाने की चीज लेकिन मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये बहुत कठिन बात है, इतना स्पष्टवादी होना अपने प्रति। दूसरे के दोषों के बारे में तो अपन बड़े स्पष्टवादी होते हैं, दूसरे का जरा सा दोष दिख गया अगर तो 4 लोगों से कहते फिरेंगे, और फिर बाद में कहेंगे क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या देखा था हमने, देखा हमने, कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। ये स्पष्टवादिता नहीं कहलाती भैया, अपने बारे में स्पष्टवादी होना, ये स्पष्टवादिता हमें सरल बनाएगी। और सादगी और भोलापन, सादगी का एक उदाहरण मेरे सामने का था। बहुत अम्मा जी बहुत पुरानी थीं, वृद्ध हो गई थीं, बहुत सरल थीं, उन्होंने कभी अपने जीवन में फोटो नहीं खिंचवाई। हाँ तो अब घर के बच्चों ने कहा कि अम्मा, छोटा गांव था, उस गांव में तो फोटोग्राफर भी उस समय नहीं था, तो सब बच्चों ने कहा कि अम्मा अपन चलते हैं और जरा पास में शहर में 30-40 किलोमीटर शहर है वहां पर, अब सबकी एक फोटो तो होनी चाहिए, बाद में सबके काम आएगी देखने के लिए, और आपकी तो जरूर होना चाहिए अम्मा, अब आपकी उम्र 80 साल की हो गई। ए भैया हमें नहीं खिंचवाने फोटो, जिंदगी निकल गई हमने नहीं खिंचवाई फोटो। अब वो सरलता थी उनकी कि अब क्या फोटो खिंचवाना है इसमें। लेकिन देखना वो सादगी किस तरह की। बच्चों ने कहा कि ठीक है, अब अम्मा नहीं मानती हैं तो इनको मत चलो, ले चलो अपन, चलो अपन सब खिंचवा ले आएंगे। और अम्मा ने आवाज दी, ए भैया सुनो तो। क्या अम्मा? देखो हमने तुमसे मना कर दी है, हमारी नहीं खिंचवा के ले आना तुम फोटो। अब बताओ है ये सादगी की नहीं, है ये सरलता की नहीं? अब उन्होंने उनको कैसा लग रहा है, जबकि जब तक जाएंगे नहीं तो फोटो कैसे खिंचेगी? पर इतना इतना भोलापन है, इतना सरल मन है अगर, कि हमें ये चीज नहीं करनी है माने नहीं करनी है। ऐसी सादगी हमारे जीवन में आ सकती क्या? ऐसी सादगी बच्चों से सीखना चाहिए, ऐसी सादगी और भोलापन बच्चों को देखना, उनके बीच घंटे भर रहो। किसी ने लिखा कि अगर आप सच्चे और सरल होना चाहते हैं तो बच्चों के बीच थोड़ी देर अपना बिताओ, वे आपको सिखाएंगे कि कैसे सरल और सच्चे होना चाहिए। एक बार सबको मालूम होगी वो घटना, हम ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बता रहे हैं आपको। अक्सर नहीं होता है घर में कि जब अपन किसी से नहीं मिलना चाहते हैं तो बच्चों से कहला देते हैं कि कह दो पापा नहीं, नहीं करते हैं ऐसा? और बच्चे बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। एक बच्चे को कहा उन्होंने पापा ने कि जाओ कह दो कि है नहीं, तो उसने मालूम जाके क्या कहा, पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं घर में। आप क्या कहेगा, उसको तो नहीं मालूम कि इसमें कौन सी चाल है, उसको तो नहीं मालूम कि इसमें कौन सा इनका वो है भाव है, उसने तो जैसा था वैसा। इसको कहते हैं भोलापन। हालांकि इसमें घाटा बहुत है, लेकिन ये घाटा थोड़ी देर का है, और वो जो अपने को ठगने का घाटा है वो बड़ा घाटा है। लेकिन जिस दिन ये लगने लगे ना, तब सवाल तो ये है, अभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा करने में लाभ दिखता है, लेकिन ऐसा करने में मेरा जो घाटा हो रहा वो जिस दिन दिखने लगे तो काय को कोई इस तरह का करेगा। हमें वर्तमान में ही लाभ नहीं देखना चाहिए, अपने जीवन का यदि पतन होता हो तो वो बड़ा घाटा है। वर्तमान में होने वाले घाटे और लाभ से हमारा जीवन चलता है, हम लोग ऐसा करते, लेकिन जीवन में जो हम घाटा और लाभ, जो अपने जीवन को ऊंचा उठाने और पतित होने में जो विचार करना चाहिए, वो विचार जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को क्या ला पाएंगे, हमें लाना चाहिए। हमारा ये जो छल कपट करने का भाव है वो किसी से छिपता नहीं है भैया, सब समझते हैं। और होता ये है कि सब एक दूसरे को गलत ही समझते हैं, क्योंकि सब हमारे भीतर छल है तो हमें दूसरे के भीतर भी छल दिखता है। क्योंकि हम दूसरे के प्रति संदेह करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, तो दूसरा भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह ये डिसक्वालिटीज़ हमारे भीतर बढ़ती चली जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि अपन ने बस सरलता पर सरल ढंग से ही समझना चाहिए, है ना? नहीं तो सरलता पर प्रवचन करें और कठिन हो गए तो और गड़बड़ हो जाएगी। इतने में तो अपने को समझ में बात आ गई। एक छोटा सा और उदाहरण जिससे कि और थोड़ी बात, वैसे वो उदाहरण बहुत प्रचलित है, सभी लोग उस उदाहरण को जानते होंगे, पर इस अवसर पर अपन फिर से याद कर लें कि जैसे वो एक बुढ़िया अम्मा चली जा रही थी रास्ते से अपने सिर पर पोटली लेकर के, आया याद? आ गया? फिर क्या हुआ था? फिर एक घोड़े वाला निकला, तो बूढ़ी अम्मा तो थक गई थी, तो उनने कहा एक घोड़े वाले हमारी एक पोटली रख लो, थोड़ी दूर हमको जाना है वहां हम ले लेंगे। घोड़े वाले ने कहा टाइम नहीं है इसके लिए, मैं क्या इसी के लिए अपना घोड़ा लेके निकला हूं। लेकिन घोड़े वाले को थोड़ी दूर जाने के बाद मन में आ गया छल, क्या पता बूढ़ी अम्मा पोटली में क्या क्या माल टाल बांधे हो, ले लेना चाहिए और लेकर के भाग जाना चाहिए। तो फिर बड़े उससे वापस आया। सरल बनना बहुत आसान है, सरल दिखना बहुत आसान है, सरल होना बहुत कठिन है। सब कोशिश करते हैं कि सरल बने, सरल दिखें, भले ही सरल ना हो। हाँ ये बड़ी कठिन बात है, सरल बने फिरना, सरल दिखना, ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे अपन। अपन तो सरल हो जाएं भीतर तो सब ठीक हो जाता। और उन्होंने अब उस व्यक्ति ने लौट करके बड़े सरल बनने की कोशिश करी, बड़े सरल दिखने की, कि अरे लाओ अम्मा हमारी तो गलती हो गई, आप इतना बोझा कैसे ढोएंगी। और दुनिया भर की बातें सब आ जाती हैं फिर,
जब भीतर कुछ गड़बड़ आती है तो ये सब ऐसे आने लगती हैं। अब बुढ़िया ने इनकार कर दिया तो फिर मालूम क्या उसने कहा कि अरे बुढ़िया अम्मा, तेरे से किसी ने क्या कह दिया? तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि तेरे मन में जिसने कह दिया ना, उसी ने मेरे से भी कह दिया, और कोई नहीं आया अभी इस बीच में, कोई कहने नहीं आया, लेकिन तेरे मन में जिसने जैसा कह दिया उसी ने मेरे लिए भी आकर के कह दिया कि अब छल आ गया है। भैया अपन कितनी बार इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि इन बातों को अब विचार करना शुरू करें, चुपचाप शांति से बैठ करके, तो इनसे अपन को ज़रूर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलेगी, इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा और सरल बने। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।